गोविंद भाई ने बहुत अच्छा गीत बजाया जो हम अभी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम? सैर रूहानी। क्योंकि सारा दिन आप कमरे से डायमंड हॉल, डायमंड हॉल से डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल से फिर अपने कमरे में ब्रह्मलोक, कोई कहीं कोई कहीं, सारा दिन क्या करते रहते हो? सैर करते रहते हो। लेकिन वो सैर धूप में भी होती है, गर्मी भी होती है, चलना पड़ता है, पसीना भी आता है और पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं। लेकिन ये सैर रूहानी राहत देने वाली सैर है, सुख देने वाली, राहत देने वाली, रूह को सुकून देने वाली ऐसी सैर है। जो बहने गई थी तपोवन, उनमें से कुछ वापिस आई है? एक बस शायद वापिस आई है। अच्छा, इतनी आ गई है, यानी एक बस या दो बस तो आ गई होंगी। फिर दो बसेज आ गई होंगी, कुछ इधर आ गई, कुछ कहीं इधर उधर रह गई होंगी। चार आ गई। असल में उनको चार बसेज यानी 200 बहनों की जरूरत थी और जब हाथ खड़े किए थे तो लगभग इतने ही थे। लेकिन फिर एक दूसरे का देखे देखी, तू भी चल, तू भी चल, चल चलते हैं, भेलपूरी खाएंगे, ऐसे करके बहुतों को तैयार करके वहां खड़े हो गए। वो अपनी चार बसेज भर के ले गए और पता नहीं भेलपूरी भी मिली कि नहीं मिली। नहीं मिली नहीं मिली तो जो नहीं गए वो ठीक रहे, ठीक रहे ना, फिर चलो तसल्ली हो गई। ये बात से भी सुकून मिला कि उनको नहीं मिली भेलपूरी, तो इसीलिए यही ठीक रहे हम। और आप सब भी वापस आ गए, वेलकम, सेवा करके आए। अब ये अपने अपने ट्रीज जब देखने जाएंगे तो इनको अच्छा लगेगा, जब वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे ना प्लांट्स, क्योंकि बहुत बहुत सुंदर तपोवन बना हुआ है और इसमें जो खेती होती है, स्पेशल ऑर्गेनिक खेती और योगिक खेती, योग जहाँ बैठकर किया जाता है, तो उसको बहुत बार अवार्ड मिला हुआ है, बहुत सारे इनाम मिले हैं, इसीलिए मशहूर है ये। अपना तपोवन बाहर दुनिया में भी मशहूर है, प्रसिद्ध है। अच्छा, सैर रूहानी हम क्यों करें? पांच स्वरूपों के अभ्यास की बात करेंगे आज, क्योंकि बहुत सी बहनों ने ये भी पूछा कि योग में अव्यक्त अनुभव क्या करें, विजुअलाइज क्या करें। और ये सब कुछ बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में सुनाया है, अव्यक्त वाणी में, अव्यक्त मुरली में सब कुछ क्लियर किया है कि क्या सोचो, क्या देखो, मन बुद्धि की आंखों को कहाँ बिजी रखो। जो अच्छी पुरुषार्थी बहने हैं, कुमारियां हैं, वो अब करेंगी ऐसा या कुछ करती भी होंगी, प्रतिदिन अगर एक मुरली, एक अव्यक्त मुरली का भी अध्ययन, एक तो साकार सुननी तो जरूरी है, साकार मुरली तो सुने बिना, जो कि सुबह की क्लास में होती है, वो तो सुने या पढ़े बिना उसी डेट की, नाश्ता ही नहीं करना है, ये अगर पक्का नियम बना लेंगे तो मुरली कभी मिस नहीं होगी। क्योंकि नाश्ते के टाइम तक भूख लगेगी और भूख लगेगी तो वो भूख आपको याद कराएगी कि आज तुमने मुरली नहीं सुनी या पढ़ी। तो इसीलिए नाश्ता करना ही नहीं है उस दिन, व्रत रखना है, ना दूध पीना है ना नाश्ता करना है। किस दिन? जिस दिन, हाँ, जिस दिन मुरली नहीं सुनी या पढ़ी, मुरली मिस की, तो ये आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन दिए बिना शरीर का भोजन नहीं देना है, बैठ चाहिए। कि अगर ये धारणा पक्की करेंगे तो बहुत जल्दी पक्की हो जाएगी, क्योंकि हम इसके पीछे स्किप करेंगे। जिस दिन मुरली सुनी पढ़ी नहीं ट्रेन में यहाँ वहाँ, तो उस दिन नाश्ता नहीं करेंगे तो वो याद कराती रहेगी कि ये धारणा तोड़ी है। क्योंकि अब आप मोटी मोटी धारणाएं तो कर चुके हैं, है ना, भोजन शुद्ध खा लेते हैं, माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, वो भोजन शुद्ध खिलाते हैं आपको और प्याज लहसुन के बिना खाते हैं, और पवित्रता की धारणा आपकी पक्की है ही, इसीलिए ये धारणाएं तो अच्छी हैं। बहुतों में सिंप्लिसिटी की धारणा भी है, लेकिन नुमा शाम का योग मिस ना हो, अमृत वेला मिस ना हो, अवश्य करना है, मुरली अवश्य पढ़नी है उसी डेट की उसी दिन। बहुत साधन मिल गए हैं, पहले सेंटर पर मुरली उसी डेट की नहीं आया करती थी, ये शायद 1991 से शुरू हुआ है, उससे पहले लंबी लंबी खद्दर जैसे कागज पे मुरली आती थी साइक्लो स्टाइल होकर, जब हम ज्ञान में आए थे तो लंबी लंबी मुरली आती थी और तीन पेज में दो मुरलियां होती थी और टाइपराइटर से टाइप की हुई मुरली, फिर उसको साइक्लो स्टाइल किया जाता था, तो इस तरह की मुरली होती थी। बहुत सारा मिस प्रिंट भी होता था और वो मुरली हर सेंटर पर अलग अलग डेट्स की होती थी, कब मधुबन से चलती थी, कब पहुंचती थी, कहीं 10 दिन में पहुंचती थी, कहीं 15 दिन में, कहीं 6 दिन में, पूरे भारत में वो मुरली पहुंचती थी और अलग अलग डेट्स पर पहुंचती थी, इसीलिए हर सेंटर पर अलग अलग डेट्स की मुरली होती थी। फिर किस तरह से बड़ों ने बैठ के सोचा, प्रोग्राम बनाया जो कि सब जगह उसी डेट की मुरली पहुंचे बाय पोस्ट। और उसके बाद अभी तो साइंस के साधनों ने सब कुछ कितना इजी कर दिया है ना, मुरली इंटरनेट पे अपलोड कर दी जाती है, जब मर्जी प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक टाइम पर आपको मुरली मिलती है, हर एक के मोबाइल में उसी डेट की मुरली पहुंच जाती है। पहले कंप्यूटर में देखते थे और फिर प्रिंट निकालते थे, अब तो हर एक के मोबाइल में होती है, इसीलिए साइंस के साधनों ने सब कुछ इजी कर दिया। अब ये बहाना तो नहीं लगा सकते कि हमें मुरली मिली नहीं, ये बहाना तो अब नहीं चल सकता, लेकिन अब तो सिर्फ अपने अंदर की कमजोरी है जो ये बताती है, मन की कमजोरी योग नहीं लगाने देती, मन की कमजोरी मुरली मिस कराती है। माया जब जब अटैक करती है तो उसके अटैक करने की ये जगह है, मन और बुद्धि पर अटैक करती है, तो मन और बुद्धि पर जब माया अटैक करती है तो पहला काम वो यही करती है, अमृत वेला योग में सुलाती है और मुरली मिस करवाती है, ये माया का पहला काम है। क्योंकि दुश्मन जब भी वार करता है ना, तो वो ये देखता है कि इनको रसद, पानी, ताकत की चीज, इनको अस्त्र शस्त्र वेपन्स कहाँ से मिल रहे हैं, तो वो उस सप्लाई लाइन को कट कर देता है ताकि दुश्मन कमजोर होके अपने आप अपने खेमे में, अपने कैंप में अपने आप ही मर जाएगा। तो इसीलिए माया को भी पता है योग, मुरली, ये सब कुछ इनकी सप्लाई लाइन है। भाई ये पंखे नहीं चल रहे हैं, ये बहनें फील कर रही हैं, कई पंखे चल नहीं रहे हैं, चेक कर लो जरा बिजली वाले भाई जी, क्योंकि एक ही पंखे को 10 हाथ तो लगते हैं, 10 बहनें आती हैं, वो सोचती है इन्होंने चलाया नहीं, मैं चलाती हूँ, तो फिर वो उसको चला के देखती है। तो इसलिए हम ये बात कर रहे थे कि माया का पहला अटैक ये है, दूसरा अटैक जब ये कर लिया तो इसके बाद आलस और अलबेलापन बढ़ा देती है और फिर योग में मजा आना बंद हो जाता है। जब योग में मजा नहीं आता तो योग में बैठने को दिल नहीं करता। अच्छा, संगठन में हम योग क्यों करते हैं? वो उनके लिए होता है जिनका योग नहीं लगता। चलो, एक तो वो है जो योग किया करते थे, बाबा से प्यार करते थे, किन्हीं कारणों से तलाक हो गया और अब दिल नहीं करता है, माया ने इतनी बार अटैक किया कि अब उनका दिल नहीं करता योग में बैठने को, योग करने को। लेकिन जो योग सीख रहे हैं, जो अभी योग करना चाहते हैं, तो उनके लिए संगठन में योग इसलिए रखा जाता है कि बहुत सारी लकड़ियां जल रही होती है ना, तो उसमें गीली लकड़ी भी जल जाती है, एक दो गीली लकड़ी भी जल जाती है, और वैसे एक दो गीली लकड़ी को अकेले जलाओ तो वो जलेगी नहीं, धुआं देती रहेगी, झुलसती रहेगी और धुआं देती रहेगी, सिर्फ धुआं उठता रहेगा, उसके वाइब्रेशन फैलते रहेंगे, क्या करूं, क्या सोचूं, योग तो लगता नहीं है, पता नहीं ये लोग कैसे योग लगाते हैं, पता नहीं इनका भी लगता है कि नहीं लगता, ये भी कुछ और सोच रहे होंगे। तो जिसका योग नहीं लगता वो दूसरों के बारे में भी ऐसे सोच रहा होता है। अब करना क्या है कि संगठन की पावर लेनी है उस आत्मा को जिसका योग अभी शुरू किया है, नहीं लगता, मेहनत कर रही है। तो यहाँ जैसे ही प्रवेश करते हैं, अक्सर रोज शाम को ऐसे होता है जब 6:30 साढ़े 7 का योग होता है आप सब योग में बैठे होते हैं, उस वक्त कोई भी नए विजिटर्स जब आते हैं, कहीं कहीं दरवाजे से घुसते अंदर, तो उनको बहुत बहुत अच्छा वातावरण, बहुत सन्नाटे का वातावरण खींचता है। अब उनमें से जरूरी नहीं सबका योग लगा हुआ हो, जितने बैठे होते हैं तो उनमें से 10% का योग नहीं भी लगा हुआ होता है, व्यर्थ घूम रहा होता है, तो भी आने वाले को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। क्यों हुआ उनको? क्योंकि पूरा शांति कुंड जैसा बना हुआ है। इस यज्ञ कुंड में उनकी छोटी मोटी कमजोरियों की आहुति पड़ चुकी होती है, तो पूरा शांति कुंड जैसा अनुभव हर एक उस वक्त अंदर आने वाले को होता है। और वो ये कहते भी हैं, वहां वो बातें करते आ रहे होंगे और जैसे ही उनको कोई भाई बहन अंदर लेकर आता है, वो चुप हो जाते हैं, एकदम चुप, शांति है, बहुत अच्छा है, यहाँ साधना कर रहे हैं। उनको लगता है सभी योगी तपस्वी बहने या भाई, सभी तपस्विनी साध्वियां साधना कर रही हैं, उनको ऐसा लगता है। अब उनमें से अगर दो चार साधना नहीं भी कर रही तो भी चल जाता है, लेकिन अब हम 100% साधना ही करें, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। पिछले विकर्म, पिछले जन्मों के विकर्म भी विनाश करने हैं। पता नहीं कब कब उजागर हो जाते हैं, कभी बीमारी के रूप में, कभी कहीं अटैचमेंट के रूप में, कभी लालच। आज मुरली में कहा ना, हबच, हबच माना लालच, हवस, है ना, ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं, ऐसे थॉट चलने लग जाते हैं। तो ये किसी किसी विकार के रूप में पिछले जन्मों के विकर्म, पाप कर्म, वो भी सामने आ जाते हैं। तो सोचो, पिछले जन्मों के विकर्म भी विनाश करने हैं, इस जन्म में जो गलतियां की, पाप कर्म किए, वो भी विनाश करने हैं। नए विकर्म ना बने, उसके लिए विवेक एकदम जागृत रहे, उसके लिए भी बहुत अच्छा योगी बनना है। इतनी सी भी गलती हो और महसूस हो जाए, या ठक ठक हो, सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड बताए, वो क्लीन होने लग गया ना। अब जो पहले सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में कचरा भरा हुआ था, वो आपने कॉन्शियस माइंड से योग कर करके, योग लगा लगा के उसको क्लीन कर दिया, तो वो क्लीनलीनेस होने लग गई। तो अब जरा सी भी गंदगी अंदर आने लगती है तो पता लगता है। जैसे आज एक बहन ने अनुभव सुनाया कि उसने लगातार 15 तारीख से आज तक बिल्कुल मौन रखा, कंप्लीट मौन, सबने नहीं रखा, बहुत कम थी ऐसी, 5-10% बहने हैं जिन्होंने रखा, 5-10% या 5-7 बहने, 5-10 बहने होंगी शायद, तो कंप्लीट मौन रखा। और कहती, जैसे आज मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे बार बार ऐसे लग रहा कुछ गलती तो नहीं हो रही, बोलने से सिर भारी हो रहा है, और ना बोलने से जब बोलना ही नहीं है तो सोचना भी नहीं है, बहुत लाइट फील करती रही, बहुत अच्छा लग रहा था। ये उसने एक्चुअल अनुभव सुनाया उस कन्या ने। अब आप सोचिए कि लगातार 3-4 दिन के मौन ने उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस कराया, बाबा की समीपता का, हल्केपन का, शांति अंदर भर रही है, चार्जिंग हुई इसका। तो हम डेली अगर कई कई घंटे, लाइक सुबह उठे 4 बजे उठे तो 4 बजे से 8 बजे तक बोलना नहीं है, शाम को 6 बजे से 10 बजे तक बहुत जरूरत पड़े तो बोलना है, वरना यहाँ ताला लगा के रखना है। तो 8 घंटे एक दिन में हो जाएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा, क्योंकि अगेन पिछले विकर्मों को विनाश करना, इस जन्म के विकर्म भस्म करना, गलतियों की पहचान हो, गलतियां ना हो, वो तुरंत अंदर ठक ठक करे कि ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद इतनी ताकत भरना कि अंत में जब होलसेल में मौत होगा, सबके लिए शरीर तैयार नहीं होंगे और सबके सब वापस परम धाम भी नहीं जाएंगे एकदम, तो सोचो भूत प्रेत आत्माएं जब भटक रही होंगी तो उनको भी तो शांति देनी है, कि उनके गुस्से के, विकारों के, वो अंदर वो तो चल ही रहे होंगे ना, वो आत्मा सूक्ष्म शरीर से ही भटकती है, तो वो भी शांत हो जाएं, अटैक ना करें, आप पर भी अटैक ना करें, फिर तो ये स्थिति होगी, आप इतने अच्छे योगी बन जाएंगे कि अगर किसी और पे अटैक कर दिया ना किसी भूत प्रेत ने, तो आपके पास लेके आएंगे कि इनका भूत निकालो। निकाल दोगे कि खुद डर जाएंगे? तब तक ताकत आ जाएगी ना, तब तक आ जाएगी ना ताकत। तो ये भी काम करना है, अपने संस्कार बदलने, दूसरों के भी संस्कार शांत करने, अच्छे करने, बदलने हैं। इतना काम और योग बल से करना है, तो इसीलिए योग बल जमा करना जरूरी है। सिर्फ इतनी सी कमाई नहीं करनी, जैसे वो फुटपाथ पे लगा के बैठते हैं ना, वहां पंजाब में बोलते हैं फड़ियां, वो छोटी छोटी दुकानें चारपाई पर, तख्त पर, नीचे चद्दर बिछा के, तो इस तरह से वो हॉकर्स जो बैठते हैं फुटपाथ पे, तो वैसे मार्केट वाले क्या करते हैं, उस तरह की कमाई करने वाले रोज की कमाई करते हैं, रोज खा लेते हैं, है ना, या डेली वेजेस वाले। तो इतना सा योग लगाया और थोड़ा सा काम सोचा वो ठीक हो गया, थोड़ा सा योग लगाया आज सारा दिन अच्छा निकला, मन को शांति मिली, ठीक हो गया। तो ये तो बहुत थोड़ी कमाई है, और बाबा चाहते हैं योग बल जमा हो, बाबा ये चाहते हैं। तो योग बल जमा करने के लिए डेली 8 घंटा मौन रहने की कोशिश करें, जागते हुए, जागते हुए, सोते हुए नहीं, सोएंगे तो मौन हो ही जाएंगे। जागते हुए जिन बातों पर रिएक्ट करते थे, जोर से बोल देते थे, इरिटेट होकर बोलते थे, गुस्सा कर देते थे, वहां भी ये लॉक लगाना है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पिछले जन्मों के हिसाब किताब हैं जो आज तक पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा भी आप सबको अनुभव है कि अभी तक वही नहीं पीछा छोड़ रहे और नए हिसाब किताब बनाने नहीं हैं, है ना। यहाँ जिनसे मिले, दोस्ती की, प्यार किया, गए तो ओम शांति, फिर उसको फोन, फिर व्हाट्सएप पर मैसेजिंग, फिर मिलना जुलना, बार बार बातें करना, ये क्या नया हिसाब किताब बना के चल दिए? पहले वाले चुकतू नहीं हो रहे, और यहाँ मिले तो यहाँ फिर आपस में एक दूसरे से फिर दिल लगा के बैठ गए। इतना इमोशनली वीक नहीं होना है कि कहीं भी लट्टू हो जाते हैं, ऐसा इमोशनली वीक बिल्कुल नहीं बनना। सबसे बहुत अच्छी तरह हंसो, मुस्कुराओ, याद करो, बातें करो, और इसके बाद गए तो ओम शांति, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। कितनों को घसीटते रहेंगे, कितनों की यादें लेकर घूमते रहेंगे, फिर बाबा याद नहीं आएगा। तो इसीलिए ये अभ्यास करना है, जैसे यहाँ सोफे से उठते हैं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते सोफा की हालत क्या कर दी, चेयर की हालत क्या कर दी, मुड़के भी नहीं देखते, चल जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसे ही मिले, बाबा का ज्ञान दिया, परिचय दिया, दोस्ती की, इसलिए दोस्ती की कि उसको बाबा से जोड़ना है, उसका अच्छा पुरुषार्थ बनाना है, ये किया, और उसके बाद छुट्टी, है ना। उसके बाद उससे चिपके रहना, जुड़े रहना, इसकी आदत नहीं डालनी है, ये अपना संस्कार बनाना है। तो अभी हम 5 स्वरूप में क्या क्या करना है वो करेंगे। बाबा ने अव्यक्त वाणी में ये बताया था, 5 स्वरूप और इस पर अभ्यास, और अभ्यास भी जब से बताया था तब से लंबे टाइम का अभ्यास। अब लंबे समय के अभ्यास में क्या क्या हो, अब लंबे समय का अभ्यास इसलिए जरूरी था कि अंत में सिर्फ बाबा ही याद आए, इसीलिए बाबा ने हमेशा ये बात कही कि बहुत काल का अभ्यास करना है। पीछे जो बहनें हलचल हलचल कर रही हैं वो ध्यान से सुनेंगी, क्योंकि अब इसके बाद फिर हम योग भी उतना ही दिल से, प्यार से, उतने अच्छे तरीके से लगाएंगे जैसा बाबा मुझसे चाहते हैं। आत्मा की पहली स्थिति जब हम परम धाम से आए थे, पहले हम परम धाम में हैं, सबको पता है ये सिर्फ रिवीजन है ना। कुछ है नई बहनें जिनको नहीं मालूम होगा, वरना सबको मालूम है। परम धाम हमारा अनादि स्वरूप, ऑलवेज ज्योति बिंदु स्वरूप, हमेशा मैं चमकता हुआ सितारा अपने घर में, घर लाल प्रकाश का है, आत्मा सफेद है, बाबा भी सफेद है, चमकदार। कईयों ने पूछा कि बाबा की किरणें लाल है कि बाबा की किरणें सुनहरी है या सफेद है। अब तो टीवी पर पीस ऑफ माइंड में विजुअल्स में भी दिखाते हैं, वो हमेशा व्हाइट ही किरणें आती दिखाते हैं, पीछे कलर्स अलग अलग हों लेकिन किरणें हमेशा व्हाइट ही आती हैं, और उन व्हाइट किरणों में सातों रंग होते हैं ऑलरेडी। इसीलिए रंग बिरंगी किरणें फील करें या व्हाइट किरणें फील करें, एक ही बात है। लेकिन बाबा ऑलवेज व्हाइट लाइट है और ऑलवेज व्हाइट किरणें ही देता है। आप उसके रंग अलग अलग करके भी महसूस करें तो आपकी इच्छा पर है। तो हमेशा मैं आत्मा चमकदार परम धाम में हूं, ये जब चाहे आप देख सकते हैं। ये पहला स्वरूप है कि मैं वहां स्थित हूं। मस्तक में है तो दुनिया में काम कर रहे हैं, मस्तक से हटे तो मैं परम धाम में हूं। पहला स्वरूप, अनादि स्वरूप, जिसमें मैं आत्मा, कुछ भी वेट मेरे पास नहीं है, कोई बोझ नहीं, सारे के सारे पार्ट पूरे करके फिर मैं आत्मा परम धाम में गई हूं। मेरे सब रोल कंप्लीट हो चुके, सारे हिसाब किताब पूरे हो चुके और आत्मा वहां फ्रीज हो जाती है। वहां कोई रोल तो प्ले करना नहीं है। तो रात को रोज ऐसा अभ्यास कर सकते हैं, मेरा आज का रोल कंप्लीट हुआ और मैं आत्मा परम धाम में पहुंच गई। तो मैं परम धाम से ज्योति बिंदु आत्मा व्हाइट लाइट वहां से आती हूं अपने आदि स्वरूप में। 150 साल सुंदर चमकीले डिवाइन बॉडी में, छोटा सा प्रिंस, छोटी सी प्रिंसेस, मैं अनादि आत्मा परम धाम से आई सतयुग में आदि स्वरूप में। आदि स्वरूप माना ये मेरा शुरुआत का है, पीछे के स्कार्स, पीछे का वेट, पीछे की बातें, पिछले जन्म की यादें, कुछ भी लेके नहीं आई मैं। यहाँ जन्म ले रहे हैं हम, आत्मा पिछले जन्मों का इम्प्रेशन लेकर आती है, लेकिन जब परम धाम से आएगी तो, सुन रहे हैं ना सभी, पीछे वाले सुन रहे हैं, तो जब परम धाम से आएगी तो आत्मा की कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी लेके नहीं आई आत्मा, एकदम इनोसेंट, बहुत पवित्र, बहुत इनोसेंट। यहां देखो जो आत्माएं पिछले संस्कार लेकर आती हैं, लेकिन है छोटे से बच्चे के शरीर में, वो भी कितना प्यारा लगता है क्योंकि उसकी स्मृतियां अभी इमर्ज नहीं हुई हैं। तो जब तक उसकी पुरानी स्मृतियां इमर्ज नहीं हुई तब तक वो बहुत प्यारा लगता है, डिटैच रहता है, वो किसी की भी गोदी में चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे स्मृतियां जागने लगती है, वो मम्मी के चिपका रहता है, पापा के चिपका रहता है, कोई दूसरा बुलाता है तो नहीं जाता, तो वो उसको बुलाना छोड़ देते हैं, उसको गोदी में उठाना छोड़ देंगे फिर, क्योंकि वो रोने लग जाता है। अब क्या हुआ, स्मृतियां जागृत हो गई, ये मम्मी ये पापा, तो अटैचमेंट शुरू हो गई। हम जब परम धाम से आए थे तो कोई अटैचमेंट नहीं, किसी को जानते नहीं थे, सबके साथ आने के बाद भी संबंध हुआ तो वैसा जैसे छोटे छोटे बच्चों का होता है, बहुत प्यारा और पवित्र संबंध। ऐसा जैसे ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, गार्डन में जब तक खेलते हैं वो बड़े प्यार से खेलते हैं, और जब उनकी मम्मियां उठा के ले जाती हैं तो वो अलग तो अलग, फिर वो वहां मस्त हो जाते हैं। वो 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा ये थोड़ी कहता, हाय मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपने फ्रेंड को, मेरे को वापस ले चलो, मेरे को उन्हीं के साथ खेलने दो, कुछ नहीं कहते, वो तुरंत डिटैच हो जाते हैं, बड़े प्यार से बाय बाय करके अलग होते हैं। वो इतने इनोसेंट, इतने पवित्र, बहुत ही खूबसूरत, हम परम धाम से आए और सतयुग में हैं, एक एक दिन जी के देखो 150 वर्ष उतने इनोसेंट रहेंगे, कुछ भी नहीं चिपकता वहां पर, क्योंकि कर्म अकर्म होते हैं। जैसे बहुत छोटे बच्चे का कुछ भी कर्म किया होता है उसका रिजल्ट नहीं निकलता, वो उठाता है, फेंकता है, इस गिलास को फेंक देता है, इसको फेंक देता है, उसका विकर्म नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो जानता नहीं है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, है ना। उसको पता नहीं है टूट जाएगा तो विकर्म बन जाएगा, उसको ये ज्ञान ही नहीं है। तो इसीलिए सतयुग में हमारे कर्म अकर्म होंगे, कितने लंबे समय तक, 1250 वर्षों तक हम उतनी इनोसेंट स्टेज में रहेंगे। जन्म बदलते जाएंगे लेकिन होंगे छोटे बच्चों जैसे इनोसेंट। आदि रूप, अति सुंदर, अति सुखदाई, अति आनंदकारी, सबके साथ रहते हुए जीवन मुक्त, जीवन में रहते हुए मुक्त, किसी देहधारी से बातें करते हैं मुक्त, नो अटैचमेंट, बहुत बहुत अच्छी स्थिति है ये, विदाउट अटैचमेंट वाली बहुत बढ़िया स्थिति है ये। क्योंकि अटैचमेंट के किस्से देखो, आपके पास गहने हैं तो वो गहने लॉकर में रख रखे हैं, है ना, सोने के, हीरे के, डायमंड के, पहनते नहीं है क्योंकि अटैचमेंट है, गुम ना हो जाए, खराब ना हो जाए। अच्छा, मेरे पास जितने थे मुझे पहनने नहीं थे, मैंने आपको दे दिए कि ये गहने आराम से पहन के रखो, गुम हो जाए, टूट जाए, खराब हो जाए तो और ले जाना मेरे से, बहुत है मेरे पास। इनका क्या करोगे आप? झाड़ू पोछा करते भी पहन के रखोगे, ये लॉकर में नहीं रखोगे क्योंकि ये मेरे नहीं है। मैंने कहा इनको पहनना ही है, इनको यूज करना है, तो दूसरे ने दी है, यूज करने को दी है, आप कितने आराम से यूज करते हैं विदाउट अटैचमेंट। तो जहां अटैचमेंट नहीं है वहां हर चीज कंफर्टेबली यूज की जाती है, और जहां अटैचमेंट होती है वहां कंफर्टेबल होके यूज नहीं करते। एक बहन ने 125,000 रुपए का ड्राइंग रूम में बढ़िया सा सोफा बनवाया और लगवाया, नया सोफा खरीदा 125,000 रुपए का। अब वो बिचारी इतनी परेशान हो गई, कोर्स करने आई तो बताने लगी, पहले 10,000 रुपए का सोफा था, हम भिंडी काटते थे, सब्जी काटते थे, उस पे बैठ के काटते थे आराम से, टीवी देखते रहते थे और वहीं बैठ के सब्जी काटते, वहीं बैठ के चाय पीते, वहीं बैठ के कुछ भी खाते थे, और जब से 125,000 रुपए का सोफा आया है परेशान ही हो गए। अब यही ध्यान रखती रहती है जो आए हुए हैं मेहमान वो कैसे हैं, बिल्कुल व्हाइट चमकदार, उसमें नग जड़े हुए हैं, बहुत सॉफ्ट, इनके नाखून तो नहीं बढ़े हुए, ये सोफे पे ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहे कहीं, देखो जरा चौंकड़ा लगा के सोफे पे बैठ गई। अब ये बहुत बढ़िया सोफा होता और आपके घर में होता तो आप ऐसे ना बैठने देते, जब देखो नीचे से चल के आए चौंकड़ा लगा के सोफे पे पालथी मार के। वो अब सारा दिन यही देखती रहती है, परेशान हो गई बिचारी 125,000 रुपए का सोफा लाके। अटैचमेंट से दुखी है, सोफे से दुखी नहीं है। वैसा सोफा पड़ोसियों के घर हो, सरकारी जगह पे रखा हो, वहां जाके कंफर्टेबली बैठेगी, अब वो खुद भी नहीं टांगे ऊपर करके बैठती उस सोफे पे क्योंकि खराब हो जाएगा, नया बढ़िया सोफा है। तो अटैचमेंट दुख देती ही है, चाहे चीजों से हो, चाहे लोगों से हो, चाहे पिछली पुरानी बातों से हो, हर जगह अटैचमेंट से दुख और परेशानियां होती हैं। आपको इस सीट से भी अटैचमेंट हो जाए ना कि जब मुझे क्लास में आना इसी सीट पर बैठना है, तो जब कोई और बहन बैठी मिलेगी आप उस रिएक्ट करोगे, उसको हटाने की कोशिश करोगे, कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी रिक्वेस्ट करके, क्योंकि सीट से अटैचमेंट हो गई, मुझे यहीं बैठना है। अटैचमेंट दुख देती है। तो सतयुग में हम कैसे थे? अटैचमेंट फ्री, कहीं कोई अटैचमेंट नहीं, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव, अपनी देह से अटैचमेंट नहीं, देहधारियों से अटैचमेंट नहीं, पदार्थों से नो अटैचमेंट, इसीलिए बेहद आनंद की स्थिति। ये है मेरा दूसरा स्वरूप। तीसरा स्वरूप जो बाबा ने बताया वो आत्मा का वही स्वरूप, लेकिन अब अपनी पहचान खुद को गायब हो गई, लेकिन बाबा ने कहा स्वमान में रहना है, योगी बनना है, तो उसको उस तरह से याद करो। बन तो गए हम भगत, द्वापर युग में भक्त बन गए, मांगने लग गए, लेकिन बाबा ने इतने पॉजिटिव तरीके से याद कराया कि आप आत्मा भक्त भी बन गई, पूज्य भी हो, तो मंदिर की मूर्ति के रूप में खुद को विराजमान कर लो। भक्तों की कतार आपके सामने है, ये आपका पूज्य स्वरूप। सतयुग में कोई पूजा करेगा किसी की? करते हैं सतयुग में, सभी के सभी देवी देवता हैं, देने वाले देने वाले, कोई पूजा नहीं करता किसी की, कोई किसी से मांगता नहीं है। तो अब आप भक्त स्वरूप में नहीं, इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में। तीसरा स्वरूप योग अच्छा करने के लिए बाबा ने समझाया कि अपने आप को मंदिर की मूर्ति के रूप में देखो। शाम को जैसे ही मंदिर में घंटियां बजने शुरू हो, कईयों के घर के पास मंदिर होते हैं, उसी वक्त योग में स्थित हो जाओ। इन सबको क्या देना है? सकाश, इनकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। इन बेचारों को स्थूल चीजों की डिमांड रहती है, बच्चा पास हो जाए, बच्चे का एडमिशन हो जाए, कार ले आए, हमारे फ्लैट निकल आए, अलॉटमेंट हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। वो भगवान को समझते हैं, भगवान इसी काम के लिए है। तो भगवान ने काम आपको दे दिया, मूर्ति में स्थित हो जाओ। आपके मस्तक से, आपकी आंखों से, आपके वरदानी हाथ से क्या हो रहा है? देने वाली, मनोकामनाएं पूरी करने वाली किरणें निकल रही हैं और मैं अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हूं। और फिर चौथा स्वरूप कलयुग का नहीं बताया बाबा ने, कलयुग में संगम युगी स्वरूप। कौन है आप संगम युग में? ब्राह्मण, अनादि रूप ज्योति बिंदु, आदि रूप देवता, पूज्य रूप, और इसके बाद संगम युग में सेवाधारी ब्राह्मण। अब अपना रूप देखिए जरा, जिस दिन वो रूप मजा आता है, जब कोई स्पेशल सेवा होती है, शहर में मेला लगाया बाबा ने, प्रदर्शनी लगाई, उस दिन आप व्हाइट सूट पहन के बैज लगा के तैयार होके जाते हैं, और दीदी ने कहा योग युक्त होके समझाना है, जो आत्माएं आए उनको मस्तक में आत्मा देखना है, ये अपने बाप के घर अपना वर्षा लेने आई हैं, अपनी संपत्ति लेने आई हैं, इस तरह से फील करना। तो अब इस तरह की फीलिंग से सेवा करना, मैं संगम युगी ब्राह्मण निरंतर सेवाधारी, अपनी दृष्टि से सेवा कर रही हूँ, अपनी वाणी से सेवा कर रही हूँ, और जो मेरे पास साधन है ना, जो साधन है, धन है, चीजें हैं, आपके अच्छे लोगों से संपर्क है, उन सब से आप सेवा कर रहे हैं। आज सुबह देखा ना, हमारी बहुत अच्छी इंजीनियर बहन है सौरभा बहन, तो वो अपनी उस बुद्धि से, अपने उस कला से, हुनर से कितनी अच्छी सेवा कर रही है, कितने अच्छे अच्छे वो बनाती हैं एप्लीकेशंस या वेबसाइट, और उस पर इतना अच्छे तरीके से, मॉडर्न तरीके से ज्ञान समझाया जाए। तो मेरा संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप निरंतर सेवाधारी स्वरूप, इसमें देखो जरा अपने आप को, क्या क्या कर रहे हो आप? आपके पास दुखी परेशान टेंशन लिए हुए आत्मा आई और आप उसके पास बैठे, आपने मस्तक में देखते हुए उसकी समस्या सुनी और बाबा ने आपको टच किया, आपने वो चार बातें सुनाई और वो ठीक होके संतुष्ट होके गई। अब आप अपनी समस्याएं पूछने वाले, उसका समाधान चाहने वाले नहीं हो। मैं संगम युगी ब्राह्मण औरों की समस्या दूर करने वाली हूँ, मैं खुद ज्ञान गंगा हूँ। तो ये आपका चौथा स्वरूप। और ऐसे सेवा करते, एक एक आत्मा के पास गए, वो आपके पास आए, किसी को आपने समाधान दिया, किसी को दृष्टि दी, किसी को वाणी से सुख दिया, है ना, किसी का थोड़ा सा काम करके सुख दिया, किसी को समय दिया, और ये सब करते करते आप उनमें अटैच नहीं हुए, हल्के डिटैच फरिश्ता बन गए। पांचवां स्वरूप फरिश्ता स्वरूप। उमंग उत्साह के खुशी के पंख आपको लग गए, जिनकी सेवा की उनसे अटैच नहीं होना है, इसे अंडरलाइन कर लो। जिनसे मिले, जिनको कोई समाधान दिया, जिनकी कोई सेवा की, उनसे अटैच नहीं होना है। वो तो आपकी प्रजा है। राजा कभी अटैच होते हैं क्या? राजा प्रजा से प्रभावित हो जाए कैसा लगेगा? तो इसीलिए उनको बार बार पूछना क्या हुआ, ठीक है ना, बार बार फोन करके पूछना, नो नीड। वो ठीक ही हैं, बाबा उनकी केयर करेगा। आपने बाबा की बातें उनको बता दी और वो ठीक हैं बस अब। तो इस तरह से बिल्कुल आपने हल्के होकर सेवा की, सेवा करके डिटैच हो गए और आप फरिश्ता बन गए। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को लास्ट के 3-4 वर्ष तक सब बड़ी बहनों ने, दादियों ने फरिश्ता रूप में ही देखा। लंबी लंबी बातें लेकर उनके सामने आते थे, सुनाते थे, और वो सुनते हुए भी डिटैच हो जाते थे। जैसे काम की बात ही सुननी है सिर्फ, ये लंबी लंबी बातें नहीं सुननी है। वो ऐसे लगता था कहीं खोए हुए हैं, और खूब पालना देने वाले, सबको प्यार से पालना दी, लेकिन चुपचाप उड़ गए। 18 जनवरी 1969 के दिन अटैच होते तो भगवान को कह देते थोड़े दिन और रहने दो मुझे, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, बट उन्होंने नहीं कहा। और वो कहते तो मान लेता शायद बाबा, उनसे बहुत प्यार है ना बाबा को, शिव बाबा को। लेकिन एकदम फरिश्ता, डिटैच, हल्का। तो मैं भी ब्राह्मण से फरिश्ता बन गई, परी बन गई, वापिस चले गए, सूक्ष्म लोक क्रॉस किया, और सूक्ष्म लोक क्रॉस करते करते लाइट का शरीर भी वहीं छोड़ दिया, और मैं अकेला ज्योति बिंदु, ना मेल ना फीमेल, ना कुमारी ना कुछ और, क्या बन गई? अकेला ज्योति बिंदु आत्मा, अगेन परम धाम में। तो कितना अच्छा चक्कर लगाया ना आपने, परम धाम से आत्मा आई, जगमग जगमग करती, कहाँ आई? सतयुग, अपने आदि रूप में, बहुत प्यारा सुंदर डिटैच, बहुत खूबसूरत महल, खूबसूरत चमकते चेहरे, बहुत सुंदर कपड़े, बहुत सुंदर मुकुट गहने, लेकिन कहीं भी नहीं फंसे। वो सब कुछ धीरे धीरे क्रॉस किया, लगभग 2500 साल, और उसके बाद पूज्य देवी देवता, मंदिर की मूर्ति के रूप में भक्तों की कतार सामने, और आप निरंतर दे रहे हैं, और देते देते कलयुग में आ गए, और भगवान आया, उसने आपको ही चुना। बेशक मिट्टी से भरा हुआ हीरा था, मिट्टी से सना हुआ, लेकिन उस पारखी की नजर मुझ पर पड़ी, और उसने उस मिट्टी के गोले में से भी उस हीरे को पहचान लिया, और पहचान के उसको धोया, साफ किया, और फिर वो यहाँ लाके बिठा दिया कि इसको और तराशा जाए ब्राह्मण परिवार में। तो यहाँ तराशे गए, सुंदर चमकीले हीरे बन गए, और सेवाधारी ब्राह्मण फरिश्ता बन गए। फरिश्ता बन के वापिस शरीर छोड़ के, सूक्ष्म शरीर छोड़ के अगेन परम धाम। तो इस तरह के पांचों स्वरूपों का अभ्यास अभी भी हम करेंगे, और इसके साथ ही ये हल्कापन लेकर जाएंगे अंदर। कोई बातें के जो संकल्प चलते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं। कई बहनें कहती हैं जब योग में बैठते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब और चीजों के लिए संकल्प चलते हैं, जहां भी जाते हैं, जैसे यहाँ है, खुद कभी भोजन वेस्ट नहीं करती, औरों को भोजन वेस्ट करते देखते हैं तो संकल्प चलते हैं, अरे भाई उनका कर्म उनके साथ। सबको पता है कि यज्ञ का कना दाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना खा सकें, फिर भी वो वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उनके हिसाब किताब में जुड़ रहा है। आप उनके लिए सोच सोच के अपना हिसाब किताब उनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं, मुझे अपनी अटैच नहीं करनी अपनी फाइल उनके साथ, है ना। उनको देखो, सकाश दो, बाबा इसको सद्बुद्धि देवे, अगली बार ये भोजन थोड़ा लेवे और इसको भोजन पूरा खाना आ जाए। पानी वेस्ट नहीं करना सबको पता है, लेकिन कोई कर ही रही है तो उसके साथ जाके लड़ाई थोड़ी करोगे, उसके थप्पड़ थोड़ी मारोगे आप, है ना। एक बार प्यार से समझाया, डिटैच हो जाओ, क्योंकि सारी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, हमारा काम है उनको एक बार प्यार से समझाओ, उनको सकाश दो, अच्छे थॉट्स दो, डिटैच हो जाओ, क्योंकि अंत तो होना ही है। हम सब कुछ वो नहीं कर सकते जो इस तरह से करना चाहते हैं, जो स्थूल रूप से करना चाहते हैं, तो इसीलिए इन सब से हल्के हो जाना है। किसी बात के लिए भी संकल्प नहीं चलाना तो योग अच्छा लगेगा, नहीं तो परचिंतन होता है, योग नहीं लगता। वेस्ट थॉट्स चलते हैं, परचिंतन होता है, थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता, यहाँ से हल्कापन कभी भी नहीं लगता। फिर कहते हैं योग में बैठते हैं माथा भारी हो जाता है, काम बहुत करने हैं, माथा भारी होगा तो कैसे चलेगा। कितनी भक्त आत्माएं अब तक मांग रही है, उनको सकाश देनी है कि वो भगवान से जुड़े, भरपूरता का अनुभव करें, मांगना छोड़ दे। प्रकृति अपने रौद्र रूप में है, अब कितने भी पेड़ लगा लें, लाखों काट दिए, अब सैकड़ों लगा भी लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, पर जो हमें अपना काम करना है करते रहे। तो प्रकृति का रौद्र रूप उसको भी सकाश देनी है कि वो भगवान को चाहने वालों को, प्यार करने वालों को जरा शांति से देह छोड़ने देगी, फिर वो अपने आप ही वो शांति से प्यार से शरीर छोड़ेंगे। तड़प तड़प के, अर्थक्वेक में दब के, मर के, बाढ़ में बह के, ऐसे नहीं मरेंगे फिर वो। इस तरह से सभी को सकाश देनी है, अपने पांचों स्वरूप का अभ्यास करना है। अभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। गोविंद भाई पूछा आपने, गोविंद भाई ने, कंफर्टेबल मन बुद्धि को समझा दें कि आधा घंटा कहीं भी उठ के नहीं जाना है। जो अभी आ रही हैं बहनें, वो भी एकदम टिक कर बैठ जाएं। 7:30 बजे तक मेरी अपॉइंटमेंट है शिव बाबा के साथ, बाप दादा के साथ, मुझे कहीं नहीं जाना है। हम आशिक इश्क में बिल्कुल मशगूल हैं, व्यस्त हैं, कोई हमें ना छेड़े, ये वाली स्थिति में बैठना है। कहीं नहीं जाना, न मन से न शरीर से, कोई काम आपके बिना दुनिया में रुकने वाला नहीं है, ये याद रखें और टिक कर बैठे रहें। फिर कोई बीच में उठ के जाएगी तो मुझे पता लग जाएगा कि इसके बिना अर्थक्वेक आने वाला है, दुनिया हिलने वाली है, शायद रोकने जा रही होगी। तो इसलिए अभी पहले अपने आप को हम चारों धाम की यात्रा कराएंगे। फिर पांचों स्वरूपों का अभ्यास। चारों धाम कहाँ पर हैं? पांडव भवन के आंगन में सिर्फ। तो पांडव भवन के आंगन में ही चारों धाम है, हम सभी वहां चलेंगे। मैं पवित्र ब्राह्मण बाबा को पहचानने वाली पवित्र कन्या जैसे ही पांडव भवन के आंगन में पहुंचती हूं, साकार में बाप दादा बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। बहुत प्यार से मुझे गले लगाते हैं। साकार बाबा के साथ मैं बाबा के कमरे में हम आमने सामने, बाबा अपनी गद्दी पर बैठे हैं, एक एक अपने को अकेला समझे, बाबा के हाथों में हाथ, दृष्टि से भरपूर हो रहे हैं। मन की बातें शक्तिशाली बनने की बहुत सुंदर कोशिश, मैं और बाबा, कोई नहीं है इस बाबा के कमरे में, कुछ भी नहीं है आपके दिल में, ना पास्ट ना कोई फ्यूचर की चिंता, मैं और बाबा। कमरे से निकलकर बाबा की प्यारी सी एकांत में झोपड़ी में, बाबा की कुटिया में मैं जाकर बैठ जाती हूँ। हर अदा बाबा की देखती हूँ, बच्चों को पत्र लिखते हुए, मुझे पत्र दिखाते हुए, दृष्टि देते हुए, फील करें। झोपड़ी से उठे, हाथ में हाथ, हिस्ट्री हॉल में पहुंचे, महसूस करें, मैं भी वही हूँ, चित्र देखते हुए खो जाएं, उन छोटी कुमारियों में, रूहानी सेना में, हैदराबाद सिंध में, कराची में, चौदह वर्ष की आनंद लेने वाली तपस्या, हर क्षण हर पल बाबा के साथ, मम्मा के हाथों में हाथ, सब सामान उठाकर समुद्री जहाज में ओखा बंदरगाह पर फिर पहुंचे आबू पर्वत पर, हरियाली, ठंडक और ब्रिज कोठी में बाबा मम्मा के साथ अपने आप को देखते जाएं। भारत के भिन्न भिन्न शहरों में बाबा ने जैसे सेवा में भेजा, हाँ जी कहकर सेवा में उपस्थित, कोई और संकल्प नहीं, सारे भारत में सेवा करते हुए सभी तरह के सेवा समाचार बाबा को देते हुए, हर डायरेक्शन बाबा से ही लेते थे, और 18 जनवरी 1969 का दिन बाबा के सम्मुख खड़े और बाबा ने विदाई ले ली। शक्ति भरने का काम, समर्थ बनाने की सेवा बाप दादा अब भी कर रहे हैं। अपने आप को देखें, शांति स्तंभ के सम्मुख, लाइट के वेश में सुंदर फरिश्ता शांति स्तंभ के रूप में खड़ा है। हम आत्माएं चार्ज हो रही हैं। इस सुंदर संध्या में प्रतिदिन शांति स्तंभ के सम्मुख शक्ति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता स्तंभ के सम्मुख मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। देह से निकलकर अब मैं परम धाम में हूँ। चमकता सितारा बाबा के बहुत समीप हूँ। जगमग जगमग करता सितारा परम धाम में अपनी संपूर्ण अवस्था में लाइट माइट से भरपूर मैं सितारा इस दुनिया में आता हूँ। स्वर्णिम संसार में सुंदर सतयुग में पावरफुल निरोगी काया, बेहद खूबसूरत सुंदर शरीर, अति सुंदर वैभव, महल, बगीचे, सोने हीरों से जड़ित झूले, मानिक लड़ियों से सुसज्जित अति सुंदर पुष्पक विमान, हल्के सुंदर गहनों से सजे हुए सभी राजकुमार राजकुमारियां, संपन्नता भरपूरता आनंद ही आनंद, मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप का आनंद ले रही हूँ। सृष्टि चक्र घूम रहा है, समय उड़ान भर रहा है, धीरे धीरे हम आत्माएं पहुंच गई द्वापर युग की शुरुआत। हम ही पूज्य, हम ही पुजारी, अपने आप को देखें, अपने पूज्य स्वरूप में मंदिर की पवित्र मूरत हरेक भक्त जिसको छू भी नहीं सकता, मंदिर में सभी की इष्ट देवी या इष्ट देव के रूप में विराजमान है। सामने देखिए, इस सुंदर संध्या में घंटियां बजाने वाले, प्रसाद चढ़ाने वाले भक्तों की लाइन लगी हुई है। हर एक के मन में इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए आए हैं। आप इष्ट देवियां अपने वरदानी हाथ से खुले नेत्रों से मस्तक मणि के द्वारा सबको किरने दे रहे हैं, संतुष्टि की, शांति की, खुशी की। अपने इसी वरदानी इष्ट देवी स्वरूप में धीरे से खड़े हो जाएंगे। एकदम देही अभिमानी स्थिति, वरदानी रूप, इष्ट देवी वरदानी आत्मा इस समय भक्तों की कतार आपके सामने है। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप केवल देवी स्वरूप में हैं। अपना राइट हैंड वरदानी रूप में खड़ा करें। स्थिति वरदानी, दृष्टि वरदानी, बोल वरदानी, सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाली मैं संतोषी देवी हूँ। इष्ट देवी हूँ। आपके मस्तक से, आँखों से निरंतर वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। जहाँ आप खड़े हैं फील करें, बहुत प्योर वाइब्रेशंस के घेरे में खड़े हैं आप। धीरे से बैठ जाएं। कलयुग में चक्र लगाते हुए प्यारे बाप दादा ने आपको खोज लिया, ढूंढ लिया। ये वही सतयुगी आत्माएं हैं जिन्होंने हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। ये वही हीरे हैं जिन पर थोड़ी सी कलयुगी धूल लग गई है। प्यारे बाप दादा पधारे, एक एक की धूल साफ कर रहे हैं, शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हैं। अपने आप को देखिए, पवित्र ब्रह्मा कुमारी स्वरूप में। तन मन धन सब कुछ कुर्बान है प्यारे बाबा आपके ऊपर। इस कलयुगी धन का क्या करेंगे? इस कलयुगी शरीर को सबसे बढ़िया प्रयोग केवल ईश्वरीय सेवा में है। मैं तन मन धन से कुर्बान, मनसा वाचा कर्मणा से निरंतर सेवाधारी, विशेष आत्मा हूँ जिसे भगवान ने सेलेक्ट किया। मैं निरंतर सेवाधारी ब्रह्मा कुमारी हूँ। खुद को सेवा करते देखें, साइलेंस में बाबा की याद में उस भोलेनाथ के भंडारे में सेवा करते देखें, सबको भोजन बनाकर खिलाते संतुष्ट करते हुए, ज्ञान सुनाकर हर्षित करते हुए, समस्याओं का समाधान देकर, उनकी पीड़ा हरते हुए, देखें अपने आप को। मन भी सफेद, वस्त्र भी सफेद, बाबा की निशानी सुंदर बैज लगा हुआ, मुस्कुराता चमकता हुआ चेहरा, सब कुछ देने को तैयार, ऐसे सेवा करते करते मैं ब्राह्मण फरिश्ता बनती जा रही हूँ। लाइट, चमकीली ड्रेस, चमकीला शरीर, हल्का, दुनियावी बोझ, स्थूल शरीर सबसे न्यारा मैं फरिश्ता, सबसे डिटैच उपराम, उड़ते हुए सूक्ष्म लोक में, अव्यक्त दुनिया में, यहाँ देखें सभी आत्माएं, हम सभी रूहानी सेना अव्यक्त बाप दादा के सामने खड़े हैं, चमकीले प्रकाश की काया में हम सभी फरिश्ते, लाइट लाइट के फरिश्ते, एक एक फरिश्ते को प्यारे बाबा दृष्टि देकर, गले लगाकर शाबाशी दे रहे हैं। एक एक के मस्तक पर चमकदार विजय का तिलक लगा रहे हैं। हर एक के सिर पर सुंदर चमकीला लाइट का ताज सजा रहे हैं। कितनी सुंदर फरिश्तों की दुनिया है यहाँ। सब अपने हैं। और अब सभी फरिश्ते बाप दादा के संग लाइट का शरीर भी त्याग कर अपने ओरिजिनल रूप में वास्तविक स्वरूप में वापिस जा रहे हैं। रिटर्न जर्नी अपने घर की ओर यात्रा चमकते चमकते ज्योति बिंदु सितारे परम धाम में बाबा के बिल्कुल समीप एक विजय माला के रूप में स्थित हो जाते हैं। एकदम स्थित अपने घर में अपने शांति धाम में है। फिर से स्वयं को भ्रिकुटी की कुटिया में देखें। ये शरीर, ये मस्तक मेरी कुटिया है। मैं इसमें बैठी तपस्विनी हूँ।